मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज इस साल के आखिरी महीने का पहला दिन यानी कि मित्रों 1 दिसंबर 2016 है और आज के इस afeias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में सब्जेक्ट के लिए फिर से मैंने एक स्टूडेंट के मेल को चुना है और ये स्टूडेंट इन स्टूडेंट का मैं नाम लेना चाहूंगा, ये हैं दीपू सिंह। और इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत घटना की चर्चा की है जो इनसे ही जुड़ी हुई है। इनकी 24 नवंबर को अभी शादी हुई है और उस शादी में इन्होंने दोस्तों दहेज में कुछ भी नहीं मांगा सिवाय एक नीम और एक पीपल के पेड़ के, यानी कि बिना दहेज के शादी की। और दहेज के रूप में जब मांगने की मजबूरी भी आई तो उन्होंने एक नीम का पौधा कह लीजिए मांगा और एक पीपल का पौधा और उसे फिर अपनी शादी की यादगार के रूप में रोप दिया। तो दीपू आपको और आपकी पत्नी दोनों को मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से इस बहुत ही खूबसूरत काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके अंदर इसी तरह से हमेशा एक नई और जबरदस्त चेतना पैदा करता रहे और इस तरह की चेतना जो दूसरों के लिए भी रोशनी का काम करे। दीपू इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि उन्होंने मेल में लिखा है कि शायद वो अभी हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं 6th बैच में वो आ भी रहे हैं। और साथ ही दीपू आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को, स्पेशली अपने माता पिता दादा दादी को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम कहिएगा कि उन्होंने आपके इस फैसले में आपका साथ दिया और उसे सहर्ष स्वीकार भी किया। मित्रों आज मैं इसी विषय को थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, शादी ब्याह के विषय को नहीं, एक सामाजिक चेतना के विषय को, खासकर समाज में परिवर्तन के विषय को। मित्रों अभी कुछ दिनों पहले, हार्डली 2-3 दिन पहले की बात है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो अखबार आता है उसमें भी एक खबर छपी थी जो मुझे नेट पर देखने को मिली। उसमें ये सूचना खबर थी पूरी की पूरी कि एक आईएएस ऑफिसर है 2013 बैच के आशीष वशिष्ठ जिन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिला है और एक उन्हीं की बैचमेट हैं सलोनी सिदान जो अभी विजयवाड़ा में एसडीएम हैं। दोनों सेम बैच के हैं 2013 के, एक विजयवाड़ा में अभी एसडीएम के रूप में पोस्टेड हैं और एक मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में एक एसडीएम के रूप में पोस्टेड हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इन दोनों की शादी हुई है, दोनों ने शादी की है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ने शादी केवल 500 रुपए और 1000 रुपए के बीच में की है, यानी कि बिल्कुल ही सीधी शादी, जिसको यूं कह लीजिए कि वास्तव में विवाह किया है। और मित्रों इसी तरीके से एक न्यूज मैं टीवी पर देख रहा था, पता नहीं प्राइवेट चैनल पर था, शायद प्राइवेट चैनल पर ही था, कि गुजरात की एक दंपत्ति थी, उनकी पूरी शादी की तैयारियां हो चुकी थी, मामला नोटबंदी पर आ गया तो उन लोगों ने फैसला किया कि नहीं हम शादी करेंगे और चाय पर शादी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाय पर चर्चा का एक अभियान चलाया था, आपको ध्यान होगा, उसी तरह से उन्होंने चाय पर शादी की और जो भी बाराती आए, जो भी मेहमान आए थे उन सबको सिर्फ चाय पिलाई गई और वह शादी का जो कार्यक्रम था संपन्न हुआ। मित्रों यह एक तरफ है और दूसरी तरफ हमने सुना है कि 500 करोड़ रुपए की भी शादी हुई। दोस्तों चाहे 500 करोड़ की शादी हो या 500 रुपयों की शादी हो, शादी तो शादी है और शादी का मतलब सिर्फ एक संकल्प है जिसमें दो लोग आपस में जीवन भर साथ रहने का वायदा करते हैं और हमारा समाज उसका साक्षी बनता है। अब उस समाज को साक्षी बनाने के लिए आप 10-10 हजार रुपए के शादी के कार्ड और बंटवा दीजिए, उनको 5,000 रुपए का खाना खिला दीजिए या एक सिंपल सी सूचना दे दीजिए और उनको चाय नाश्ता करा दीजिए। यह आपके ऊपर है कि आप अपने शादी को एक भव्य आयोजन में तब्दील करना चाहते हैं या एक ऐसे सादे समारोह में जिसमें धर्म भी होता है, संस्कार भी होते हैं, परंपराएं भी होती हैं और सच पूछे तो भावनाएं भी होती हैं। मुझे लगता है कि ये जो शादी विवाह का जो मामला है मित्रों, ये दूसरी श्रेणी का, यानी द्वितीय श्रेणी उस तरीके से नहीं, भावनाओं का मामला है, संस्कारों का मामला है, संकल्प का मामला है, संस्कृति का मामला है और सुहावनेपन का मामला है। वहां दिखावा आडंबर इनकी कतई कोई जरूरत नहीं होती है और कितना भी आप दिखावे आडंबर कर लें वो आपकी शादी के स्थायीपन की गारंटी भी नहीं होते हैं, लेकिन हां एक बार वो सारा का सारा तामझाम जरूर हो जाता है। मित्रों, मैंने दो तरह के आपको उदाहरण दिए। एक हमारे दीपू सिंह हैं जो अभी अपने जीवन के जद्दोजहद में लगे हुए हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने वो भी उदाहरण दिया कि दोनों सिविल सर्वेंट बन चुके हैं, और मैंने ऐसे भी उदाहरण दिए कि जो बहुत ही सामान्य परिवार से हैं गुजरात के, और ऐसे भी दिए जो बहुत ही बड़े राजनेता के संतानें हैं और शादी पर 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ये सब अपना अपना व्यू है, अपना अपना अपने अपने विचार हैं। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि सच में आप सब में से वे जो कहीं भी अपनी थोड़ी सी पहचान बना चुके हैं, और देखिए गांव में तो हालत यह होती है कि अगर कोई लड़का थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, कोई लड़की थोड़ी सी भी पढ़ लिख जाती है तो सच पूछे तो वो अपने गांव की लीडर बन जाती है। लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं, उसकी चर्चा करने लगते हैं। तो जहां भी ये स्थिति आ जाए आप समझ लीजिए कि लीडरशिप आपको मिल गई है। लीडर का मतलब कोई यही नहीं कि पूरे देश के आप नेता बन रहे हैं। लीडर आप अपने घर के भी हो सकते हैं, अगर घर वाले आपकी बात मानने लगे हैं तो वहां भी आप लीडर हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि वो जो लीडरशिप के रोल में जब हम पहुंचते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम समाज में अपने कामों के जरिए, अपने आचरण के जरिए, अपने विचारों के जरिए कुछ ऐसे तो मापदंड निर्धारित करें जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकें, हमारे समाज को जो पिछड़ापन है, पिछड़ेपन की जंजीरों में जो हमारा समाज जकड़ा हुआ है उसको तोड़ सके। कौन शुरुआत करेगा मित्रों? अगर उन चीजों को आप बुरा मानते हैं तो शुरुआत क्यों नहीं करते, या तो उसे बुरा मानना बंद कर दीजिए। दहेज, आडंबर, दिखावा, इन सबको स्वीकार कीजिए, खुले मन से स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं करप्शन की तो जगह जगह पर बुराइयां करता हूं और जब मौका मिलता है अंधेरे में तो उसी में डुबकियां लगाता हूं। ऐसा तो कम से कम मुझे लगता है कि दोहरा चरित्र नहीं ही होना चाहिए। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है, दायित्व तो है, और सच पूछिए तो यही हमारा सच्चा धर्म भी है कि हम अपने लोगों को सही रास्ता दिखाएं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार आप रास्ता दिखा दीजिए, शुरू में रास्ता नहीं दिखता है, लोगों को लगता है कि इस घनघोर जंगल में रास्ता है ही नहीं, हम घुस ही नहीं सकते, लेकिन एक बार आप उस रास्ते को, जो जंगल में घुस करके उस पार निकल करके आवाज दे दीजिए, देखिए कि उस रास्ते पर लोग चलने लगते हैं। और आपको मालूम है दोस्तों गांव में कि जब एक ही रास्ते पर लगातार लोग रोज आना चलने लगे तो वहीं तो पगडंडी अपने आप उभर आती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुदाल कंधे पर लेकर के रास्ता बनाएं या फिर वहां पर कोई डाबर की सड़क बिछाएं। लोग चलने लगेंगे, चिन्ह उभरने लगेंगे, पगडंडी बन जाएगी और कुछ समय के बाद वो रास्ता बन जाएगा। परिवर्तन तो ऐसे ही होते हैं। मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। उस समय मैं राष्ट्रपति भवन में था, मेरे जो पीए थे उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनको अपने पिता के मृत्यु भोज के लिए 40,000 रुपए की जरूरत पड़ी। ये बात मैं आपको 95-96 की बता रहा हूं, 40,000 रुपीज। उन्होंने अप्लाई किया अपने जीपीएफ से कि मुझे 40,000 रुपए चाहिए और उसमें उन्होंने ये रीजन लिखा। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि मैं बट नेचुरल है कि आपके पिता की मृत्यु हुई है, मृत्यु भोज दिया जाता है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, अदरवाइज गांव वाले बुरा भी मानते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन्होंने कहा कि सर, सबसे बड़ी हमारे गांव की समस्या पानी की है। हमारी गांव की औरतें दूर दूर तक पानी के लिए जाती हैं और गर्मी के दिनों में तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, जानवर तक पानी के लिए प्यासे रहते हैं। तो मैं कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते कि मृत्यु भोज की जगह वहां पानी का इंतजाम क्यों नहीं करते, ये करो और मैं अभी तुरंत सैंक्शन कर रहा हूं। मित्रों, पता नहीं, शायद उनको भरोसा होगा, उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने यही फैसला किया कि मृत्यु भोज की जगह वो पानी का हौद बनाएंगे, वहां एक हैंडपंप लगवाएंगे और वहां एक पानी का हौद बनवा देंगे ताकि उसमें पानी इकट्ठा रहे। 5-10 हजार रुपए उनके और अपनी तरफ से लगे और मैंने कहा कि वहां अपना एक पट लगवा दो, अपने पिता का नाम लिखवा दो और देखना कि जब जब लोग वहां का पानी पिएंगे तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति प्राप्त होगी, उनकी आत्मा तर होती रहेगी। एक बार सब खाना खा करके चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन तो सदियों तक चलेगी। मित्रों, उन्होंने ऐसा किया। शुरू में गांव वालों ने थोड़ा सा विरोध किया जरूर, लेकिन फिर शांत हो गए गांव वाले। और दोस्तों, उसका असर ये हुआ कि गांव में फिर वह उस तरीके की परंपरा चल निकली कि अगर किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो मृत्यु भोज के स्थान पर वो सब किया जाने लगा जो उनके गांव की जरूरत हो, शुरुआत हो गई और उसका श्रेय इनको मिल गया। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम एक एक ऐसी स्थिति को चुने जिनसे हमारा समाज जकड़ा हुआ है और मुक्त करने के लिए खुद कदम उठाएं। दोस्तों, यहां मैं बताना चाहूंगा कि ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, लोगों के दिमाग में मुझे मालूम है कि किस किस तरह के प्रश्न उठते हैं। लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर, अभी आपने उन आईएएस ऑफिसर का नाम लिया और इन दो लोगों के भी नाम लिए कि शादी में दहेज ने लिया, आपने क्या किया था, आपने कुछ किया था? मित्रों, मैं केवल सूचना के तौर पर बता दूं कि मैंने सिविल सर्वेंट बनने के बाद शादी की थी। शादी की मतलब पक्की भी मेरी जो शादी है सिविल सर्वेंट बनने के बाद हुई थी। ब्लैंक चेक आ रहे थे कि ले लो और शादी कर लो, और दोस्तों, मैंने बिना दहेज के, बिना तिलक के और बहुत सादे तरीके से शादी की थी। तो ये इसलिए आप लोगों के दिमाग में मैं केवल क्लियर करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि मैंने ऐसा किया। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं मित्रों कि यदि मैं कह रहा हूं आप सबसे, तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी उसे करूं। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के कंधे पर अपना बोझ डाल करके और हाथ हिलाता हुआ तफरीह करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप सब करें, क्योंकि एक व्यक्ति कितना कुछ करेगा। आप भी सब कुछ नहीं कर सकते, मैं भी सब कुछ नहीं कर सकता, कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम सबको ही कर सकते हैं और कुछ ना कुछ मिलकर के ही सब कुछ बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सब अपने लिए चुने, अपने गांव के लिए चुने। अगर आपका गांव निरक्षर है तो पढ़ाने का काम चुन ले कि मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। लोगों को सूचनाएं नहीं मिलती है तो मैं उन्हें जानकारी दूंगा। ज्ञान बांटने का काम दीजिए। गांव में उनसे संबंधित कितनी सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में उनको बताइए। जनधन योजना खाते के बारे में बताइए। वो बैंक नहीं जा रहे हैं, उनको इकट्ठा करके बैंक का भ्रमण कराइए। बैंक के मैनेजर से बात करके उनसे कहिए कि आप इनको बैंक के बारे में जानकारी दीजिए। और अभी तो फिर ये जो कैशलेस सोसाइटी के बारे में प्रधानमंत्री जी का ही आह्वान है, गांव के लोगों को बताइए कि इससे कितना फायदा होगा। धन पैसे के गिरने का डर नहीं, पैसे की चोरी का डर नहीं, पैसे के गलने खराब होने का डर नहीं, फटने का डर नहीं, भीगने का डर नहीं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इस तरीके से अपने अपने उपाय निकालिए विज्ञापन के और लोगों को बताइए और सूचना दीजिए। कुल मिलाकर यह मित्रों कि अपने आचरण के द्वारा दूसरों के सामने मापदंड स्थापित करके वाकई में लीडरशिप का रोल निभाइए। तो दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।